अब वो दुआएं जिसमें कर्ज अदा करते वक्त क्या मांगेंगे, यानी कर्ज वापस करते वक्त की दुआ, बारकल्लाहु लक फी अहलिका व मालिका इन्नमा जज़ा उस्सलफिल हम्दु वल अदाउ। अल्लाह ताला आपके अहलो याल और मालो दौलत में बरकत अता फरमाए। कर्ज का सिला तो सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया और अदा ही है, यानी जब कर्ज लिया किसी से, अल्लाह ने कर्ज के अदा करने के असबाब बना दिए, हमने वो दुआ भी सीख ली, और जो दुआ सीखी थी आखिरी वो सही मुस्लिम की रिवायत थी 2713। आप कर्ज वापस करते वक्त जिसने आपको कर्ज दिया था ना, यहाँ देखिएगा पहचान मंदी का दर्जा, हमारे यहाँ तो कोई कर्ज लेके कर्ज ही वापस कर दे तो बड़ी बात है, लोग कहते हैं देना किसने है वापस ले, आप कहते हैं कर्ज दें, फिर जब वापस मांगने हो तो मांगे, क्योंकि हम इसकी बहुत कंपेन चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे अपने अमल में ये चीज़ें रहती हैं अपने स्कूल्स के ज़रिए से, कि ठीक है आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं आप जमा कर दें, किसी प्रोजेक्ट में लग जाएंगे, जब आपको ज़रूरत हुई तो आप ले लेंगे, चले किसी आपके मुसलमान भाई बहन को ज़रूरत है तो आप उसको दे दीजिए, फिर जब आपको ज़रूरत होगी तो दे देंगे, तो लोग कहते हैं ले। अब हमारे मुल्कों में जी कर्ज़ लेके वापस कौन करता है, और जो बैंकों के या कार्ड्स के और दूसरे कर्ज हैं उनको तो फिर लेना आता है ना वापस, वो तो निकलवा लेते हैं। हालांकि याद रखिए कि इंसान कर्ज से ऐसे बचे जैसे प्लेग से बचता है, कोई मूजी बीमारी, आजकल लोग कोरोना वायरस से जितना डरते हैं, जिस तरीके से उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं ना, इससे भी ज़्यादा कोशिश हमें इन सारी चीज़ों से जिनका तذکرہ हम पढ़ रहे हैं बचने की करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे फिर इसमें कर्ज है। तो अब वापस कर रहे थे तो बारक अल्लाहु लका, अल्लाह ताला आपके अहलो याल में बरकत दे, वह मालिक और माल में, यानी गोया कि इसमें कर्ज देने वाले का शुक्रिया अदा हो रहा है कि जब मुझे ज़रूरत थी आपने मुझे दी, अब मैं आपको वापस कर रहा हूँ, लेकिन साथ एक्स्ट्रा दुआएं दे रहा हूँ। देखिए कर्ज जिससे लिया ना उससे वापसी में एक कुछ भी ज़्यादा नहीं मांग सकते, लेकिन एक्स्ट्रा देने के लिए एक चीज़ है और वो है दुआएं, और वो भी आप देख रहे हैं कि बरकत की दुआएं हैं। तो मुझे यानी इस चीज़ का इकरार करने में कोई शर्म नहीं कि आपने मुझे कर्ज दिया, अब मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला आपके माल और अहल में बरकत दे, और इन्नमा जज़ाउ सलफिल हम्दु, कर्ज का सिला तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, तारीफ यानी शुक्रिया, वल अदाओ और अदा करना, यानी ये सिर्फ तारीफों से भी बात नहीं बनेगी कि आप तारीफ करते रहे इन्होंने मुझे कर्ज दिया, नहीं पैसे भी वापस करने पड़ेंगे और फिर उनका शुक्रिया भी अदा करना पड़ेगा। ये दुआ देख लीजिए इब्ने माजा में 2424 है और सुनन अल कुबरा निसाई 10204 है। तो ये दुआ बहुत कम लोगों को आती है या पढ़ते हैं, तो जब भी कभी किसी को कर्ज वापस कर रहे हो तो ये दुआ मांगिए, अभी भी शऊर के साथ याद करते हैं, छोटी सी दुआ चंद बार आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगी, शुरू कीजिए इस।
بارك الله لك في أهلك ومالك بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء إنما السلف الحمد والأداء بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء
आप देखिए कि यह सलफ़ का लफ्ज़ आया ना, बाकी रहने वाली चीज़, यानी आम तौर पे तो जब आप सदका खैरात दे देते हैं तो मामला ख़त्म हो जाता है ना, लेकिन कर्ज़ का मामला बाकी रहता है। चलिए अगली तो अभी बहुत ही प्यारी है, और अगर आप में से किसी ने अगर ये नहीं कभी सीखी या मांगी तो मुझे यकीन है कि आप کو ایسے لگے گا کہ پا لیا پا لیا. اور دعا کیا ہے؟ مصیبت کے وقت نعم البدل مانگنے کی دعا. یعنی جب آپ پہ کوئی مصیبت آئے تو آپ اس کا آلٹرنیٹو مانگتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا دعا ہے؟ پہلے دعا کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی, یعنی میم کو اپنے نا ساتھ ملانا ہے, دونوں طرح سے آتا ہے, لیکن اب جو دعا ہمارے سامنے ہم پھر اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. اللہم اجرنی, میم کو حمزہ سے ہلکا سا جھٹکا اور جرنی الگ ہوگا. اب یہ جب سیکھیں گے تو اس پہ غور کیجئے گا. فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا. اس کا بھی آدھا حصہ آپ نے پہلے بہت دفعہ پڑھا ہوگا, اور ہم پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی بھی مصیبت پہ, چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پہ بھی کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. واقعی یقین ہے ہمیں؟ اتنی کثرت سے یہ جملہ پڑھتے ہیں, اور کوئی پڑھے نا اگر فون پہ بات کرتا کرتا تو ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے, کیا ہوا, کس کو کیا ہوا. حالانکہ ایک صحابی تھے چراغ گل ہوا, تو انہوں نے انا للہ ہی پڑھا, تو کسی نے کہا کہ چراغ گل ہونا بھی کوئی مصیبت ہے جس پہ یہ پڑھے. کہا ہاں یہ بھی مصیبت ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی انسان کے ساتھ ہو. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اے اللہ مجھے میرے اس صدمے میں اجر دے اور مجھے بدلے میں اس سے بہتر دے. جو پہلا حصہ ہے وہ تو قرآن کی آیت ہی ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ آپ کسی بھی تکلیف کے موقع پہ یہ انا للہ والے جملے پڑھتے تھے. اور اس میں بھی اللہ کی طرف پلٹنے کا احساس ہے, اور ہم بغیر شعور کے پڑھتے ہیں کہ اچھا تم چلو ہم بھی آئے. لیکن یہ جو پوری دعا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت 918 میں ہے. اور جو ہی یہ دعا سامنے آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. ان کے شوہر تھے ابو سلمہ, بہت ہی پیارے صحابی, اور یہ وہ جوڑا ہے کپل یعنی جس نے حبشہ بھی ہجرت کی, پھر مدینہ میں ہجرت کی, اور جو بھی بات سنتے تھے اللہ کے نبی سے آ کر گھر میں اپنی بیوی کو سکھاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے آ کر یہی دعا سکھا دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو کوئی دنیا میں صدمہ پہنچے تو اس کے بعد وہ یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھے, تو نہ صرف یہ کہ آخرت میں اجر ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں بھی اس تکلیف کا یا وہ جو چیز اس سے چھن گئی اس کا بہترین نعم البدل دے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, یعنی بیوی نے دعا سیکھ لی اور ان کا انتقال ہو گیا. اب عدت کے دوران ام سلمہ یہ دعا بھی مانگتی ہیں, اور دل میں سوچتی ہیں کہ یہ ہوگا کیسے. ابو سلمہ سے تو اچھا کوئی شخص مجھے پورے مدینہ میں نہیں دکھتا, تو مجھے اس سے اچھا شوہر کیسے ملے گا. یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ ایک مسلم عورت کا عقیدہ کتنا کلیئر تھا. ہمارے ہاں ہوں تو اللہ معاف کرے, اب کہاں ہونی ہے شادی, یہ کوئی عمر ہے اور لوگ کیا کہیں گے. نہیں, اسلام ایسا نہیں ہے. 50 سال, 60 سال, 70 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی اکیلا رہ گیا تو اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں سورۃ نور میں, وان کے علیم اپنے ایامہ کے نکاح کر دو. اکیلا تو بس اللہ ہی اچھا لگتا ہے, اللہ سب کے جوڑوں کو سلامت رکھے. لیکن بہرحال ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگتی تھی, اور جو ہی عدت ختم ہوئی اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آگے نکاح کا. کل اللہ نے مجھے حکم دیا ام سلمہ کہ میں تجھے نکاح کا پیغام دوں. ان کو تھوڑے سے کچھ تحفظات تھے کہ میں تو بڑی عمر کی ہوں, آپ نے کہا میری بھی عمر کم نہیں, میں بچوں والی ہوں, کہا آپ کے بچوں کو میں اپنے بچے سمجھوں گا, کہا کہ میرے مزاج میں غصہ ہے, ایسا نہ ہو کہ کہیں شوہر بیوی کے رشتے میں میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے آپ کے رسالت والے مقام پر زد پڑے اور میں گناہگار ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کا غصہ کم کر دے, یا آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں الگ سے الگ لے جائے. اور واقعی پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ کو ازواج مطہرات میں شامل کر دیا, اور وہی بعد میں پھر امت کی ماں کہلائیں. تو یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے, اور یقین شرط ہے. اور اگر آج کے دور میں کوئی کہے یہ ہوگا کیسے, دوسری شادی تو ہو نہیں سکتی, اب اس عمر میں کہاں شادی کروں گی, تو یہ باتیں ہمارے کلچر کی ہیں. अल्लाह ना किसी पर डाले लेकिन डलती है, ये कैसे हो सकता है कि सारी उम्र ही हमेशा साथ रहा जाए। हर रिश्ता अधूरा है, हर चीज़ छोड़ जाती है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो बंदे को तन्हा नहीं छोड़ती। तो इस दुआ को याद रखिए, छोटी से छोटी तकलीफ और बड़े से बड़ी तकलीफ पे याद रखें, ना भूलने वाली दुआ है, जिसको कहते हैं ना नॉट टू बी मिस्ड दुआ। और आप फिर इसके जो असरात देखेंगे, ये मैं आपको अपने लफ्ज़ों में तो नहीं बता सकती, ये तो जब वक्त पड़ता है तो फिर इंसान देखता है। कभी वो रिश्ता सामने आ जाता है, कभी कोई और अंदाज़ इख्तियार करता है, एक बंदा जाता है दो और आ जाते हैं, एक चीज़ टूटती है उसकी जगह दो आ जाएंगी। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, तो कभी भी ज़िंदगी में कोई चोट पड़े, मादी, जिस्मानी, रूहानी, अखलाकी, किसी किस्म का सदमा आए, फ़ौरन दुआ किया करें कि अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली ख़ैरा मिन्हा। तो गैब से अल्लाह ताला मदद करेगा, ज़रा मांगिए शौर के साथ और याद भी कीजिए इसको। आमीन सुम आमीन। आप देखिए कि अब आप सब ऐसे सोचें, कोई तकलीफ़ छोटी बड़ी, कप टूट गया, हमारे तो यही बड़े गम है ना, कपड़ा जल गया, जो चीज़ ख़रीदनी थी वो बिक गई, ये सोच के हर सुनने वाला अपनी कोई तकलीफ़ छोटी या बड़ी, कोई चला गया, कोई बिछड़ गया, कोई रूठ गया, कोई छूट गया, सोच कर मांगिए ज़रा इस दुआ को बार बार। आमीन। आप देखिए ये हमारा टाइम जो है ना, ये किस्म का क्लास का टाइम नहीं है, ये हमारी दुआओं की मांगने का टाइम है। और मैंने सुबह क्लास में भी शेयर किया कि कल बहुत ही हेक्टिक डे और क्या कुछ साथ साथ ज़िंदगी में चल रहा होता है माशाल्लाह, मसरूफियत के नाम पे भी, लेकिन दिल बहुत ही खुश था। ऐसे लगे जैसे कोई खुशी मिली और दिल के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो बंदा किसी से शेयर नहीं कर सकता। सोच में पड़ गई रात को, हुआ कि आज क्या खबर है, कोई मैसेज पड़ा है, कोई कुछ? आखिर में याद है, अच्छा वो मुसीबत गम की दुआएं पड़ी हैं। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। तो मैंने कहा बस अल्लाह ने ना दिल में ठंडक डाल दी। हर वक्त ही खुशखबरियाँ हैं माशाल्लाह, नेमतों में पलते हैं, लेकिन आपके दिल में ना एक अजीब सी खुशी और एक अजीब सी ठंडक होगी। और इस दुआ को तो पल्लू से बांध लें। सही मुस्लिम में जाकर खुद भी 918 नंबर हदीस है, इसके अल्फाज को पढ़िए, सही याद कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। क्या सीखा अभी तक के दुख और गम में अल्लाह की याद का सहारा दुआओं की सूरत में है। फिर बेकरारी और इज़्तिरार में अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। कुरान में आता है 20वें पारे की पहली आयत, तो में देख लीजिए, अब मैं युजीबुल मुस्तर इज़ा दाहू, कौन है जो मुस्तर की पुकार को सुने जबकि वो उसको पुकारे। फिर कर्ज से जल्द निजात के लिए कोशिशें भी कीजिए, मज़ीद कर्ज लेना छोड़ दीजिए। कोई ऐसा कर्ज है जिसमें इंटरेस्ट भी है तो फ़ौरन से पहले कोई और चीज़ बेचें, उस कर्ज़ को दूर करें। जो मर्ज़ी हलाल तरीका इख्तियार कीजिए, या फिर उस चीज़ को ही बेच के उससे छोटी चीज़ ले लीजिए। और फिर मुसीबत पर सब्र, दुआ और अजर की उम्मीद रखनी है। तो ये तो थी कर्ज़ से मुतल्लिक, मुसीबतों से मुतल्लिक।